हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है हमारे आज के रविवार के श्रीमद् भागवतम क्लास में। गोवर्धन पर्वत की महिमा भगवान दर्शा रहे हैं, दूसरी शिक्षा जिस पर हम हैं, जहाँ गोवर्धन कृष्ण भक्ति में लौल्यम का महत्व समझा रहे हैं। लौल्यम के संदर्भ में हम पिछले कई रविवारों से ये 6C फॉर्मूला पर हैं और इनका पेयरिंग इस प्रकार से हुआ है, चॉइस वर्सेस चैलेंजेस, कमिटमेंट वर्सेस कैरेक्टर, क्लैरिटी वर्सेस कंट्रीब्यूशन। हम दूसरे मुद्दे पर हैं, कमिटमेंट वर्सेस कैरेक्टर। शॉर्ट रिकैप, पिछले हफ्ते जो हमने चर्चा करी, सक्सेस एक्सपोजेस अवर कैरेक्टर, फेलियर अवर कमिटमेंट। तो हमने ये महत्वपूर्ण विषय पिछली बार लिया, फ्रॉम जस्ट बीइंग अ डिवोटी टू बिकमिंग अ कल्चर्ड डिवोटी ऑफ कृष्णा। भगवान के जो प्रामाणिक पार्षद हैं, यहाँ पर हम श्री गिरिराज गोवर्धन की चर्चा कर रहे हैं, और गिरिराज गोवर्धन के गुणों में से, अनगिनत गुणों में से हमने ये गुण लौल्यम, और लौल्यम केवल कोई भावुकतापूर्ण लौल्यम नहीं, अपितु प्रामाणिक शास्त्रोक्त लौल्यम। तो यहां पर हम उस गुण को ले रहे हैं कि जब हमने ये ऐलान किया है कि हम भगवान श्री कृष्ण के प्रामाणिक भक्त बनना चाहते हैं, तो क्यों ना हम पूर्ण रूपेण उस प्रामाणिकता का पालन करें, नॉट जस्ट बी अ डिवोटी बट बिकमिंग अ कल्चर्ड डिवोटी ऑफ कृष्णा। क्यों? क्योंकि भारत में बहुत कहते हैं हम भी कृष्ण के भक्त हैं, हम भी कहते थे इस्कॉन में आने से पहले, कुछ मात्रा में हम भी भगवान कृष्ण के भक्त थे। तो अभाव से भगवान का प्रभाव, और फिर भगवान के प्रभाव से यदि हम प्रामाणिकता से जुड़े हैं तो हमारे अंदर वो प्रामाणिक भाव उत्पन्न होना चाहिए। तो हमने ये मुद्दा लिया, द कल्चर ऑफ भक्ति, द गोल ऑफ भक्ति, एक्शन वर्सेस इंटेंशंस। और इसमें दो उदाहरण हमने पिछले हफ्ते लिए, रोमहर्षण सूत भीष्म पितामह। रोमहर्षण सूत ऑफेंडिंग बलराम जी थ्रू एक्शंस, भीष्म देव ऑल्दो वाज अनेबल टू ऑफर ओबेसेंसेस, हिज एक्शन वाज नॉट इन वन सेंस व्हाट ही वांटेड टू डू। He wanted to perform that particular action of paying his respects, but he couldn't. But Krishna understood his intentions. तो हमने पिछले हफ्ते container versus content, culture of bhakti, goal of bhakti, और ये उदाहरण लिया था कि जब हम कोई यात्रा प्रारंभ करते हैं तो दो मुद्दे हैं, एक है गंतव्य स्थान यात्रा का, द जर्नी ऑफ डेस्टिनेशन, एंड द अदर इज फॉलोइंग द ट्रैफिक रूल्स वाइल टेकिंग अप दैट जर्नी। फोर लेवल्स ऑफ एनी जर्नी, फॉर एग्जाम्पल ट्राइंग टू रीच मुंबई, वी स्टार्ट ड्राइविंग टूवर्ड्स दिल्ली वाइल ब्रेकिंग ऑल ट्रैफिक रूल्स। तो गंतव्य स्थान भी गलत है और रूल्स भी ब्रेक करना, इससे ऊंचा लेवल ड्राइविंग टुवर्ड्स दिल्ली, गंतव्य स्थान अब भी गलत है, कम से कम ट्रैफिक रूल तो फॉलो किया जा रहा है। इससे हायर लेवल अप मुंबई की ओर प्रस्थान किया है, परंतु नियम तोड़ते हुए। और आइडियल सिचुएशन है गंतव्य स्थान भी सही और ट्रैफिक रूल्स भी सही सही फॉलो किया। इम्पायस लाइफ विथ नो प्रॉपर डेस्टिनेशन, पायस लाइफ विथ नो प्रॉपर डेस्टिनेशन, प्रॉपर डेस्टिनेशन विथ इम्पायस लाइफ, पायस लाइफ विथ प्रॉपर डेस्टिनेशन। और फिर जीविका और जीवन तत्व, इनका समन्वय, लाइवलीहुड एंड प्रिंसिपल्ड लाइफ। तो एक और है, जब ये बताया जाता है देवर्षि भूताप्त नृणाम पितृणाम न किंकरो राज्यम ऋणी च राज्यम, कि कोई ऋण नहीं है। किसके लिए कोई ऋण नहीं है? जिसने पूर्ण रूपेण भगवान श्री अच्युत की शरण ग्रहण करी है। हम कई बार उसको भूल जाते हैं, पूर्ण रूपेण। तो यहां पर ये जो मुद्दा है, आइसोलेटेड वर्सेस इंटीग्रेटेड लिविंग। कुछ साल पहले मैं एक ग्रुप के साथ ग्रीस गया था, तो वहां उन्होंने मुझे कहा था बिजनेस एथिक्स के ऊपर आप कुछ सेमिनार दीजिए। तो बहुत से अलग अलग मल्टीनेशनल कंपनीज के लोग आए हुए थे, तो बिजनेस एथिक्स पे वो सुनना चाहते थे, जानना चाहते। तो बहुत कुछ चर्चा हुई उसके अंदर। एक मुद्दा जो मुझे याद आ रहा है कि जब मैंने पता लगाया कि अधिकांश जो वहाँ पर मौजूद थे, जिस भी किसी व्यापार में थे, बिजनेस में थे, बिजनेस अर्थात कपट, उसके अंदर चीटिंग, डिप्लोमेसी, ड्यूप्लिसिटी, नहीं तो प्रॉफिट कैसे कमाओगे। तो मैं उनको बता रहा था कि वो जो आपके 8 या 10 घंटे का कॉन्शियसनेस आपके कर्म क्षेत्र में, एट योर वर्क प्लेस, आपको क्या लगता है कि वो कॉन्शियसनेस आप उसको घर नहीं लेकर आओगे? यदि एक प्रोडक्ट को बेचने के लिए आपने कपट का सहारा लिया, आपने झूठ का सहारा लिया है, कितने दिन के 8-10 घंटे अगर झूठ कपट का सहारा लिया है, तो आप जब घर आओगे तो आपको क्या लगता है कि आप आपकी बीवी बच्चों के साथ सत्यवादी हरिश्चंद्र बनोगे? शुरुआत में होगा फिर, परंतु धीरे 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 वो जो रवैया है, वो रवैया आपके घर पर भी आपको समझ में आएगा। और घर पर जो रवैया है, वो जहां पर आपका कर्म क्षेत्र है, वहां पर भी उसके ट्रेसेस दिखते हैं। दे बोथ आर इंटीग्रेटेड, यू कैन नॉट आइसोलेट कि हाँ ये मेरा कर्म क्षेत्र है, ये मेरा ऑफिशियल लाइफ है, ये मेरा पर्सनल लाइफ है, ये दोनों में कोई तालमेल नहीं है, ये दोनों में कोई समन्वय नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अब इसमें आप ऐड कर दीजिए साधना भक्ति, कि हमें शुद्ध कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है और हम किसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ ठीक है, जीवन यापन करने के लिए हो सकता है करना पड़ेगा, परंतु हम यदि ये एक्सपेक्ट करें कि वो जीवन, जो जीविका हमारे चल रही है जिस भी किसी प्रकार की, और हमारा चैंटिंग फिर शुद्ध क्यों नहीं है? और हम लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि ये दोनों में आपस में विरोधाभास क्यों, या ये आपस में ये दोनों एक दूसरे को क्यों काट रहे हैं? क्योंकि वो बनाए उसके लिए गए। पिछले साल मैं एक ऐसे परिवार से मिला, अब पता नहीं उनको परिवार मैं कहूं या एक अरेंजमेंट कहूं, शुड आई कॉल देम फैमिली और जस्ट एन अरेंजमेंट? क्यों? लिवरपूल यूके में ये एक फैमिली अरेंजमेंट, तो इसमें से ये जो पति बना हुआ था और मैं अभी क्लैरिफाई करूंगा क्यों, तो उसने कुछ पर्सनली अपना दिल खोला और फिर एक ऐसी बात रिवील करी। आज तक मैंने ऐसा अरेंजमेंट नहीं देखा था। तो उसने पहले इंट्रोड्यूस करवाया कि ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, और देखने में वो पूरी फैमिली ऐसी लग रही थी कि जैसे परफेक्ट, द मोस्ट हैंडसम हस्बैंड, द मोस्ट हैंडसम वाइफ एंड द मोस्ट गुड लुकिंग चिल्ड्रन। अक्सर एक परिवार में देखा जाता है कि कोई एक ठीक होता है, ठीक है, या तो हस्बैंड बहुत ही उत्कृष्ट दर्जे का सुंदर होगा या पत्नी होगी, थोड़ा कई बार 19-20 होता है, कई बार 20-25 होता है, कई बार 10-50 हो जाता है। तो ठीक है, यदि पति पत्नी दिखने में बहुत सुंदर हैं, हैंडसम है, स्मार्ट है, सब कुछ है, बच्चे थोड़े उनमें कम ज़्यादा कुछ होता है, या बच्चे बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, माता पिता नॉर्मल हैं, यहाँ पर चारों पति पत्नी, एक लड़का एक लड़की, सब परफेक्ट लग रहे थे। तो उसने कहा हम लोग शादीशुदा नहीं है, बाय द वे ये मेरी पत्नी नहीं है और ये मेरे बच्चे नहीं है, हम लोग एक कॉस्मेटिक मल्टीनेशनल कंपनी के एम्प्लॉयज हैं। वो कंपनी का नाम नहीं बताया उसने, तो हम लोग एम्प्लॉयज हैं और हमें ये कंपनी भेजती है जो एकदम ऐश्वर्यशाली लोग जहां रहते हैं बड़े बड़े देशों में, वहां पर हमको जाकर सेटल होना पड़ता है कुछ समय के लिए। तो मैंने कहा क्यों? क्योंकि हम हमारे पूरे इस अरेंज्ड फैमिली लाइफ से उनके प्रोडक्ट्स का प्रदर्शन करते हैं उस पूरे लोकेलिटी में। मैंने कहा कैसे करते हो? सो आई विल ऑलवेज हैव द प्रोडक्ट्स ऑन मी, आई विल बी वेयरिंग ऑल दोज प्रोडक्ट्स एंड आई विल बी कॉलिंग माय नेबर्स फॉर पार्टीज एंड आई विल बी गोइंग टू देयर पार्टीज एंड आई विल बी फ्लॉन्टिंग एंड शोइंग ऑफ ऑल दीज सैम्पल्स विच द कंपनी गिव्स मी टू शो ऑफ टू दीज एलीट पीपल। फिर ये लोग पूछे ये अरे ये कहाँ से? तो फिर मैं बता, अरे ये वाली कंपनी से, वही कंपनी है, उसके ही सारे प्रोडक्ट्स हैं, तुमको चाहिए तो मैं तुम्हारे लिए ऑर्डर करूँ, ऐसे करके। तो जो पति है वो ऐसे पार्टियों में जाता है, पार्टियाँ अरेंज होती हैं, तो वो जो मेन के प्रोडक्ट्स हैं उसको वो मार्केट करता है, जो उसकी पत्नी बनी हुई है वो महिला मंडल ग्रुप में जाती है, वहाँ पे मार्केट करती है वो उसी कंपनी के प्रोडक्ट्स, और उनके बच्चों को उन्होंने लोकल यूनिवर्सिटी में दाखला करवाया है, और वो लोग जो टीनेज प्रोडक्ट्स हैं, टीनेज प्रोडक्ट्स को मार्केट करते हैं कहाँ पर? उनके फ्रेंड सर्कल में। तो मैंने कहा फिर आप लोग घर पे रहते कैसे हो? घर पे हम लोग एज एन एम्प्लॉय रहते हैं, कोई लेना देना नहीं है। बाहर की दुनिया में ओ हनी, ओ डार्लिंग, ये वो सब, ये मेरी पत्नी है, ये सब कुछ। और घर पे आते ही तू तेरे काम पे, मैं मेरे काम पे। तो मैंने कहा फिर तुम्हारे कोई परिवार है कि नहीं जो परिवार बोला जाए? बोला है, वो जो मेरा जो नेटिव टाउन है वहां पर है वो मेरा परिवार। दिस इज प्योर जॉब, वर्क, बिजनेस, दिस इज बिजनेस। तो क्या दिख रहा है यहां पे कि दुनिया के सामने वो लोग एक बहुत ही आइडियल फैमिली हैं, और घर में सब बिजनेस है। होता है ना कई बार कलयुग में, चाहे कोई मल्टीनेशनल कंपनी ने एम्प्लॉय किया हो या ना किया हो, सबसे बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है माया देवी। तो कितनी बार देखा जाता है कि सोसाइटी सोसाइटी के सामने हाँ एक परिवार है, बहुत आइडियल परिवार लग रहा है, परंतु वही परिवार वाले जब घर पर पहुंचते हैं तो घर उनका केवल एक फॉर्मेलिटी बन जाता है। तो ये फैमिली जैसे इनका घर एक फॉर्मेलिटी था, और बाहर बाहर भी सब फॉर्मेलिटी था, लेकिन दिखाने के लिए कि हम एक बहुत ही आदर्श दंपति हैं, ये हमारे बच्चे हैं, इत्यादि इत्यादि। तो जब हम कोई एक एक्टिविटी करना चाहते हैं तो उस एक्टिविटी, चाहे वो मटेरियल हो और स्पिरिचुअल हो तो क्यों ना, उस एक्टिविटी के साथ यदि उसका वातावरण हमने निर्माण नहीं किया है, इफ द एनवायरमेंट इज नॉट कंड्यूसिव टू दैट एक्टिविटी विल नॉट हैव द डिजायर्ड इंपैक्ट। जैसे अक्सर लोग ये प्रश्न पूछते हैं, ये मंदिर में ही आके भक्ति क्यों करनी है, ये मंदिर में ही आके जप क्यों करना है, मंदिर में ही आके भगवान के सामने माथा क्यों टेकना है। तो जब श्रील प्रभुपाद को ये प्रश्न पूछा गया, प्रभुपाद ने उस व्यक्ति को प्रश्न पूछा, तुम्हें ग्रेजुएट होने के लिए स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में ही क्यों जाना है, किताबें तो सब जगह अवेलेबल है। क्योंकि वहां पर एक यूनिवर्सिटी में माहौल क्रिएट किया जाता है, किसका, पढ़ाई का। आइडियली पढ़ाई का माहौल होना चाहिए। जैसे कि यदि हम डीटी वर्शिप लें, अब देखिए डीटी वर्शिप के लिए एक एनवायरमेंट क्रिएट किया जाता है कि एक ऑल्टर है और भगवान की सामग्री, और पुजारी जो है उनको ट्रेनिंग इस प्रकार से दी जाती है कि आप क्लेनलीनेस, पंक्चुअलिटी, ये दो चीजें, क्लेनलीनेस और पंक्चुअलिटी। हाँ भक्ति तो है, परंतु यदि केवल भक्ति मन में रहे और बाकी चीजों को हम डिसरिगार्ड करें तो कंप्लीट डीटी वर्शिप नहीं है। अगर हम उस स्तर पर हैं जैसे कि जगन्नाथ दास बाबा जी, गौर किशोर दास बाबा जी, तो वो अलग बात है। परंतु जब हम उस स्तर पर नहीं हैं तो श्रील प्रभुपाद ने हमको क्या विधि दी है, जैसे जमुना माता जी, वो एक पास टाइम सुना रही थी बहुत साल पहले, प्रयाग का कुंभ मेला, यहां पर भी हमने अनुभव किया, तो टेंट वगैरह सब बंधे हुए थे और रोज मॉर्निंग प्रोग्राम होता था, तो ऑल्टर वगैरह सेटअप किया था और टेंट में ही वो टेंपल हॉल जैसा बनाया था और सब मॉर्निंग प्रोग्राम करते थे। तो एक दिन बारिश हो रही थी, तो वो जो टेंट था वहां से पानी चू रहा था ऊपर से। और फिर सब लोग मंगल आरती के लिए आ गए, अब शंख बज गया, आरती प्रारंभ होने वाली है ऑल्टर पर जो उन्होंने अर्च विग्रह लगाए थे। तो जमुना माता जी वो माचिस नहीं जला पा रही थी, क्योंकि बारिश के वजह से वो माचिस भीग चुकी थी पूरी। हमने अनुभव किया है कि अब सब लोग वहां पर मंगल आरती शुरू करने वाले हैं, तो जो लीड सिंगर है वो वेट कर रहा है कि पहले आरती शुरू हो तो मैं भी फिर यहाँ से शुरू हूँ साइमल्टेनियसली। तो यहाँ पे एक तीली, दूसरी तीली, तीसरी तीली, वो ट्राई कर रहे हैं, पूरी माचिस गीली है, जल नहीं रही है। तो श्रील प्रभुपाद ने उनको कहा, कम एंड ज्वाइन इन द कीर्तन, दिस एज इज नॉट फॉर ड्यूटी वर्शिप, लेट्स चैंट हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो अब ये प्रश्न है कि क्या चैंटिंग के लिए कोई माहौल क्रिएट करने की आवश्यकता है? डू वी नीड चैंटिंग? इफ चैंटिंग इज एन एक्टिविटी, डू वी नीड प्रॉपर एनवायरमेंट फॉर चैंटिंग? हमारे राधा गोपीनाथ मंदिर के एक डिवोटी वो बता रहे थे कि उनके फादर को उन्होंने अलग-अलग रूप में देखा है, और भक्त बनने के बाद तो और एक्सरे विजन हो जाता है देखने का। तो ये डिवोटी के फादर वो भक्ति में नहीं, तो इन्होंने अपने फादर को देखा एक बार। वो हफ्ते में 2-3 बार वो अपना खुद का बार खोलते थे घर पर, परमिट रूम यहाँ पे बोलते हैं ना जिसको, तो अपना लोकल घर पर ही लिविंग रूम में। तो वो ये बता रहे थे कि ये अपने फादर को देखे कि वो कैसे वो समा बना रहे हैं, बोलते हैं ना समा बनाया जाता है ना उसके लिए, तो कैसे वो समा बनाते थे। तो पहले तो वो बोतल लाएंगे, फिर वो ग्लास एकदम अलग प्रकार के, एक पैर वाला ग्लास होता है ना, एक पैर वाला ग्लास, एक पैर पे खड़ा हुआ ग्लास, ऐसे 2 ग्लास लाएंगे, एक फिर और फिर सोडा, फिर आइस बॉक्स, और फिर जो मेन डीटी है वो पूरा उसको एकदम अच्छी से अलाइन करके रखेंगे। तो ये एक बार ऑब्जर्व कर रहे थे ये सब चीज़ें, अच्छी से उसको अलाइन करेंगे, फिर लाइट्स थोड़ा डिम करेंगे, फिर एक कोई ऐसा म्यूजिक लगाएंगे, ला पिला दे उस टाइप का म्यूजिक लगाएंगे। और फिर इन्होंने देखा कि पूरा ऐसे थोड़ा रॉकिंग चेयर के ऊपर पूरा समा बांधा है, और फिर उसमें से 2-3 ड्रॉप्स निकाल के थोड़ा इधर छिड़केंगे, थोड़ा इधर छिड़केंगे, इधर छिड़केंगे। ब्राह्मण परिवार से थे तो उसका आचमन पहले कर रहे हैं और हाँ एक और चीज तो भूल गया, चखना, वो एकदम उत्कृष्ट दर्जे का कोंडा जी टाइप तो वो पूरा सजा के अच्छी से। और फिर तो ये इनके लड़के जो अभी हरे कृष्णा के डिवोटी, ये सब इसको क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इनके फादर उस एक एक्टिविटी, वो शराब पीने की एक्टिविटी को कितना उन्होंने उसको एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट किया कि वो एक्टिविटी, मतलब ये सोच रहे थे कि कोई 4 नियम पालन कर रहा है वो भी इम्प्रेस हो जाए और टेम्प्ट हो जाए कि चाहे शराब में कितने भी बुरे गुण हो, लेकिन ये जो समा बांधा है इन्होंने, तो ये डिवोटी ने क्या लेसन सीखा इसमें से कि यदि मेरे फादर ये ऐसा गर्हित कार्य करने के लिए इतना प्रिपरेशन करते हैं, ऐसा एनवायरनमेंट आसपास क्रिएट करते हैं, तो मैं मेरे चैंटिंग के लिए क्यों नहीं करता, जो कि सबसे बड़ा नशा है। तो उन्होंने अपने फादर से प्रेरणा ली और दूसरे दिन से फिर उन्होंने भी अपने चैंटिंग के लिए समा बांधा। है ना, बहुत से डिवोटीज बहुत कुछ करते हैं, फोटोज रखते हैं, अपने डीटीज के फोटो सामने रखते हैं, महामंत्र सामने रखते हैं, कहीं बीच में भूल ना जाए। बहुत से डिवोटीज महा शुरुआत में मुझे लॉजिक समझ में नहीं आया, महामंत्र सामने मतलब बीच में भूल जाते हो गए, तो महामंत्र सामने रखते हैं ताकि वो करेक्ट उच्चारण हो, तुलसी महारानी। हाँ, तो देखिए ऑब्जेक्ट आप बदल दो, परंतु आप यहां पे चैंटिंग के लिए ये सारी चीजें करोगे तो उसका इंपैक्ट अवश्य ही होता है। इसलिए कितने डिवोटीज ये कन्फेस करते हैं कि जब वो मंदिर में आकर, यहां पर पूरा एनवायरनमेंट, ये ऑलरेडी श्री प्रभुपाद की कृपा से इस मंदिर में वो वाइब्रेशंस और वो समा बंधा हुआ है कि यहां पर कुछ भी हो जाए, कोई कहीं से भी आए, यहां पर एंट्री करते ही उसके अंदर हरे कृष्णा की धुन ताल शुरू हो जाएगी, क्योंकि यहां पर वो फैला हुआ है सब जगह पर। तो इसलिए हाँ, ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि हमारे जीवन में बहुत से एक्टिविटीज हम करेंगे, यदि हमारा गोल, हमने हमारा गंतव्य स्थान भगवान श्री कृष्ण का प्रेम वो बनाया है और हमारे जीवन का एनवायरनमेंट उसके लिए फेवरेबल नहीं है, तो नहीं होगा। कई बार डिवोटीज वो क्रिकेट मैच देखते हुए चैंटिंग करते हैं। हाल ही में बहुत से नरसिंह प्रणाम गाए गए, फिर भी नरसिंह भगवान कृपालु नहीं थे भारत पर इतना। तो बहुत बार देखा गया है डिवोटीज बैठे हुए हैं, क्रिकेट मैच चल रहा है और सब लोग क्रिकेट मैच, इंडिया जो भी किसी के साथ खेल रहा है, उसके पहले नरसिंह प्रणाम गा रहे हैं, नमस्ते नरसिम्हा भगवान, जिता दो जिता दो। तो चैंटिंग कर रहे हैं लेकिन एनवायरनमेंट उस चैंटिंग का नहीं क्रिएट किया है। डीटी वर्शिप कर रहे हैं परंतु एनवायरनमेंट डीटी वर्शिप का क्रिएट नहीं किया है। उसी प्रकार से हमारा पूरा जीवन एक साधक का जीवन और उसका एनवायरनमेंट मतलब हमारा लाइफस्टाइल अगर उसके कंड्यूसिव नहीं है तो वो इंपैक्ट इफेक्ट नहीं होगा। तो यदि हम कुछ एग्जाम्पल्स लें, जैसे अजामिल, अब अजामिल जब निकला था उस दिन, जिस दिन उसने वो दृश्य देखा, तो अजामिल वो अपने घर के डीटी वर्शिप करने के लिए सामग्री इकट्ठा करने गया था। तो कौन सा कार्य था? सत्वगुण का कार्य था, शुद्ध सत्व बोल सकते हैं। शालिग्राम की पूजा किया करता था, नारायण शिला की पूजा किया करता था वो, तो शुद्ध सत्व एक्टिविटी। परंतु उस एक्टिविटी को उसने किस एनवायरमेंट में पाया जहां पर वो वैश्या उस शूद्र के साथ भोग विलास में रत थी। Although the activity of Ajamil was in connection with mode of goodness, but the environment was not conducive to that. यहां समझ में आ रहा है, बहुत साल पहले जुहू इस्कॉन में बहुत बड़ा फेस्टिवल था जहां पर बहुत से प्रभुपाद डिसाइपल्स, मेरे ख्याल से 25th डिसअपीयरेंस ऑफ श्रील प्रभुपाद वो मना रहे थे। तो जुहू इस्कॉन आपने देखा होगा, बीच पर ही है, जुहू बीच पर है। तो राधानाथ महाराज हमको कहे लेट्स गो फॉर अ जपा वॉक। तो हम लोग कुछ राधानाथ महाराज के साथ बीडबैग लेकर जपा वॉक के लिए कहाँ, जुहू बीच, और वो भी शाम के समय 6 बजे के बाद। तो वहां पर जुहू बीच यदि आपने देखा होगा तो बिल्कुल कोई उसमें स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट कहीं नहीं है कंड्यूसिव आपके चैंटिंग के लिए। तो चारों ओर सब जगह पर लोग केवल भोग विलास की वृत्ति में। तो मैंने ये अनुभव किया, इवन इफ यू आर विथ योर स्पिरिचुअल मास्टर विथ बीडबैग इन योर हैंड, तुलसी माला, यू आर फिंगरिंग तुलसी माला, स्पिरिचुअल मास्टर इज विथ यू, बट इफ द एनवायरमेंट इज नॉट कंड्यूसिव यू विल नेवर एडवांस। कुछ ध्यान नहीं था चैंटिंग या फिर तुम्हारे स्पिरिचुअल मास्टर का संग, नहीं। तो ये मेरा अनुभव था, हैविंग अ कंड्यूसिव एनवायरमेंट इज इक्वली इंपॉर्टेंट। काल कृष्ण दास वो तो चैतन्य महाप्रभु के साथ थे, परंतु जैसे ही भट्टाहारी के एनवायरमेंट से प्रभावित हो गए छोड़ दिया उन्होंने। तो अजामिल की सिचुएशन, एक्टिविटी वॉज नॉट इन सिंक विथ द एनवायरमेंट। सौबरी मुनि का भी एग्जाम्पल है। सौबरी मुनि कहां तपस्या कर रहे थे, जमुना के अंदर, तट पे नहीं। एक है जमुना के तट पर बैठकर जप करना या भगवान पर ध्यान, जमुना के अंदर। और सौबरी मुनि ने मछलियों को देखा मैथुन सुख प्राप्त करते हुए, तो सौबरी मुनि जमुना के अंदर भी उनके आसपास के एनवायरमेंट से प्रभावित हुए। Although the activity was in Brajmandal under the waters of Jamuna, but the environment was not conducive. विभीषण जो कि भगवान श्री राम के अनन्य भक्त, और लंका में उन्होंने वो अपनी भक्ति कर रहे थे इतने वर्षों से, परंतु जब उन्होंने देखा कि रावण जो है, रावण अपने कुकर्मों की सीमा पार कर चुका है सीता का हरण करने के पश्चात, और जो कुछ रावण और प्लानिंग कर रहा था, तो वो जब पॉइंट आया विभीषण के जीवन में, नाउ इट इज बिकमिंग इनटॉलरेबल। व्हाट इज बिकमिंग इनटॉलरेबल, द एनवायरनमेंट। तब विभीषण ने त्याग दिया, उस एनवायरमेंट को त्याग दिया। विदुर सेम एग्जाम्पल, कि वो भी रहे कब तक, जब तक कि दुर्योधन वो उस सीमा को पार नहीं किया उसने। और दुर्योधन ने जब ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट किया कि विदुर को वहां से निकलना पड़ा, तो विभीषण, विदुर और फिर हमारे श्रील प्रभुपाद। कब तक श्रील प्रभुपाद अपने गृहस्थ जीवन में टिके रहे, हम वो सब प्रसिद्ध कथा जानते हैं, टी बिस्किट्स, टी और मी। प्रभुपाद तब तक टॉलरेट कर रहे थे, ठीक है इस एनवायरनमेंट को हो सकता है कि मैं कन्वर्ट कर दूं, परंतु जब प्रभुपाद ने देखा कि ये एनवायरनमेंट मेरे प्रचार के लिए और मेरे कॉन्शियसनेस के लिए कंड्यूसिव नहीं है, तो प्रभुपाद ने डिसाइड किया I have to, या तो आप उस एनवायरमेंट को बदल दो। अगर एनवायरमेंट को बदल नहीं सकते तो आप वहां से निकल लो। और ये सब एग्जाम्पल्स जो यहाँ पर हैं, एक्टिविटी वर्सेस एनवायरनमेंट। बहुत साल पहले मैंने देखा एक हमारे भक्त भारतीय शरीर के, परंतु वो अमेरिका में सेटल्ड, तो वो राधा गोपीनाथ मंदिर आए थे। तो मैंने देखा हमारे टेरेस पर वो जप कर रहे थे, फिर बाद में वो नीचे उतरे और नीचे जो अभी वृंदावन फॉरेस्ट है, समय वृंदावन फॉरेस्ट नहीं था वो, तो वहां पर वो चैंटिंग कर रहे थे। तो मैंने देखा कि जैसे इंडिया में आप अक्सर देखते हो, कोई गला साफ कर रहा है, कोई कफ आ गया तो रोड पे यहीं वहीं थूक देता है। तो मैंने देखा इन्होंने भी वही किया। तो मैंने इनसे जाके पूछा, हाउ कम, मीन्स यू आर फ्रॉम अमेरिका? बोले या वी डोंट डू दैट ओवर देयर, वहां पे नहीं करते हम लोग ऐसा। क्यों नहीं करते? क्योंकि वहां सब कुछ साफ सुथरा होता है। मैंने देखा यहां कूड़ा करकट है, तो इसलिए मैंने थूक दिया। हम भी देखते हैं ना कि आजकल जो ये आलीशान बिग बाजार और ये सिटी सेंटर मॉल सब एकदम चकाचक ऐसे ऐसे एयरपोर्ट बनाते हैं, वही हम भारतीय वहां पर जब चलते हैं तो गला साफ करेंगे तो फिर वो जाके टॉयलेट में जाके थूकेंगे। अक्सर आप देखते हैं ना कि वो स्टेयरकेस जहाँ पे होता है बिल्डिंगों में, तो देवी देवताओं के टाइल्स लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि वो एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं वहां पे वो स्टेयरकेस में कि आप थूके ना वहां पे। तो ये डिवोटी ने कन्फेस किया, I wouldn't have done that in America because everything, the environment over there is different. It is unfavorable for spitting on the street outside. Whereas I found here कि कूड़ा करकट है कहीं पे, तो मैंने देखा कि चलो यहाँ पे करने से वैसे भी कचरा ही है, तो थोड़ा मेरी तरफ से contribution imported. तो मुद्दा क्या है यहां पर, यदि हमारा लाइफस्टाइल कूड़ा करकट है, सो डोंट एक्सपेक्ट दैट होली प्योर होली नेम विल कम आउट फ्रॉम द माउथ। इफ अवर लाइफस्टाइल इज गार्बेज, ओनली स्पिट विल कम आउट स्पॉन्टेनियसली। सो द एम्फेसिस इज नॉट जस्ट, हाँ हम लोग इतना सुनते हैं कि बस सोलह माला कर लिया, दीक्षा मेरी हुई है, दर्शन हो गया है, आज का कोटा हो गया बस, फिर उसके बाद में मेरा पूरा जो दिन है उसमें मैं कुछ भी कर सकता हूँ। यदि पूरा दिन हमारा वो कूड़ा करकट का ढेर है, तो जैसे भी हमने कहा, तो फिर हमारे अंदर से क्या निकलेगा वही निकलेगा। तो तीन प्रकार के जो धर्म बताए गए हैं, एक है अपराधर्म, पराधर्म, और ये है आपत धर्म, इमरजेंसी। तो अब प्रश्न ये उठता है कि ठीक है, हम कई बार जस्टिफाई करते हैं आपत धर्म का इस्तेमाल कर, आपत मतलब इमरजेंसी, जहां पर वो हमारा जो अपराध धर्म है उसको दुर्लक्ष करते हुए एक हायर प्रिंसिपल को इस्टैब्लिश करना आपत धर्म के इस्तेमाल करते हुए इमरजेंसी सिचुएशंस में। बट अगर यदि गुरु साधु शास्त्र के अनुसार डिफाइन नहीं हमने किया है कि वो आपत या आपत्तिजनक स्थिति कौन सी है, तो हम अक्सर कृष्णा कॉन्शियसनेस के नाम पर उसको आपत धर्म बोल देते हैं एंड स्टार्ट ब्रेकिंग दी मटीरियल लॉज और मटीरियल और बिकम इररिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स मटीरियल ड्यूटीज, जिसको कहते हैं अपराधर्म। तो इसे ठीक से समझने के लिए हम ये जो हमारा वर्टिकल एक रिलेशनशिप है और हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप, तो जैसे हमने देखा कि हमारे मटेरियल ड्यूटीज हैं और हमारे स्पिरिचुअल ड्यूटीज हैं। तो मटेरियल ड्यूटीज को क्या कहते हैं? अपरा। स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को परा। तो यदि हम इसे ये वर्टिकल साइन और हॉरिजॉन्टल साइन के तौर पर लें, तो एक साधक की भूमिका जो हम निभा रहे हैं एज अ साधक, विशेष रूप से अधिकांश आप लोग जो गृहस्थ आश्रम में हो, तो इसका जो बैलेंस है परा और अपरा का, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का, इसका बैलेंस किस प्रकार से समझना है? दे बोथ स्ट्रेंथन ईच अदर व्हेन प्रॉपरली डन। इफ यू आर प्रॉपरली सिचुएटेड इन योर पराधर्म, यू विल स्ट्रेंथन योर अपराधर्म। एंड इफ यू आर प्रॉपरली सिचुएटेड इन योर अपराधर्म विल ऑल्सो गिव स्ट्रेंथ टू योर पराधर्म। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर का उदाहरण हम लेते हैं। अब एक बार राधानाथ महाराज ने भक्ति विनोद ठाकुर जो मायापुर में है, उनका घर कौन सा द्वीप है वो? गोद्रुम द्वीप। गोद्रुम द्वीप में जो उनका घर है, वहां पर लेक्चर देते हुए उन्होंने कहा, भक्ति विनोद ठाकुर हैड मोर देन 10 चिल्ड्रन, मैजिस्ट्रेट 10 बच्चे, मेरे ख्याल से 10 से भी ज्यादा उनके थे, ज्यादा थे। तो 10 से भी ज्यादा बच्चे, एक मैजिस्ट्रेट, गृहस्थ, और वो भी अंग्रेजों के राज्य में, और ये सब होने के बावजूद वो हमारे गुरु परंपरा के इतने प्रमुख गुरु जिनको हम मानते हैं, कमल मंजरी, कौन है वो? कमल मंजरी हैं। तो महाराज बोल रहे थे, नो गृहस्था कैन गिव एनी एक्सक्यूज दैट बिकॉज ऑफ माई टू चिल्ड्रन और फोर चिल्ड्रन। महाराज पूछे, एनी गृहस्थ ओवर हियर हैविंग 10 चिल्ड्रन, एनी हैविंग 8 चिल्ड्रन, एनी हैविंग 6 चिल्ड्रन? तो भक्ति विनोद ठाकुर, उन्होंने एक पुस्तक लिखी, स्वलिखित जीवनी, उनके स्वयं की जीवनी, बहुत सुंदर पुस्तक है ये, स्वलिखित जीवनी। आप विश्वास नहीं करेंगे, भक्तिनो ठाकुर, उस समय कोई इंस्टीट्यूशन नहीं था, कोई गौड़िया मठ तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने शुरू किया, जो उनके पुत्र थे, परंतु भक्तिनो ठाकुर के समय पूरा गौड़िया वैष्णव संप्रदाय परंपरा जो थोड़ा बहुत इधर उधर था, वो सब डामाडोल था, कोई ठीक से कोई किसी का पालन नहीं कर रहा है, सहजियावाद इतना फैला हुआ था। इस स्थिति में भक्ति विनोद ठाकुर ऐसे गृहस्थ आश्रम में अपना व्यवसाय काम सब कुछ देखते हुए, डू यू नो हाउ मेनी डिसाइपल्स भक्ति विनोद ठाकुर हैड? हाउ मेनी डिसाइपल्स? ही वॉज अ गुरु, ही हैड 18,000 डिसाइपल्स विदाउट एनी इंस्टीट्यूशन। 18,000 शिष्य, किसके बलबूते पर? उनके चरित्र के बलबूते पर, दोनों उनके अपरा और परा धर्म के समन्वय को उन्होंने दर्शाया। तो भक्ति विनोद ठाकुर जब दीक्षा दिया करते थे, तो नियम क्या था? एक तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप, वो तो नियम था, जैसे कि हम लोग इस्कॉन में श्रील प्रभुपाद ने हमको चार नियम दिए। अच्छा, अब ये चार नियम क्या हैं? कई बार हम अपने आप को बहुत बड़ा मानते हैं, चार नियम पालन करते हैं। ये चार नियम हमें मनुष्य बनाते हैं बस। इफ एनीवन सेज आई एम स्पिरिचुअल बिकॉज आई फॉलो फोर रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स, देन इट इज लाइक सेइंग आई एम ऑनेस्ट बिकॉज आई डोंट स्टील। यदि किसी का परिचय ऐसा दिया जाए कि ये फलाने व्यक्ति बहुत ईमानदार हैं, इन्होंने आज तक कोई बैंक लूटा नहीं है, बहुत ईमानदारी का जीवन जीते हैं, कभी किसी का खून नहीं किया इन्होंने, अगर ऐसा परिचय दिया जाए, सो इफ somebody says आई एम स्पिरिचुअल बिकॉज आई फॉलो फोर regulative प्रिंसिपल्स, इट इज लाइक saying आई एम अ वेरी नोबल पर्सन बिकॉज आई हैव नॉट मर्डर्ड anyone। तो भक्ति विनोद ठाकुर वो जब दीक्षा दिया करते थे तो पांच regulative प्रिंसिपल्स, उनका स्टैंडर्ड क्या था? पांच regulative प्रिंसिपल्स, नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो चीटिंग एंड लाइंग। फिफ्थ regulative प्रिंसिपल क्या भक्ति विनोद ठाकुर का? नो चीटिंग एंड लाइंग। वो जिस गांव में थे, उला नाम का जो गांव, वहां पर अकाल पड़ा, तो उसके वजह से भक्ति विनोद ठाकुर का जन्म मेरे ख्याल से 1838 में हुआ। इमेजिन 1838, और 1856 में वो कोलकाता गए काम ढूंढने के लिए। 1856, और 1856 में भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कोलकाता स्टिंक्स, बदबू आती है कलकत्ता में। सोचो अभी अगर भक्ति विनोद ठाकुर जाएं, तो 1856 में, खैर वो अलग मुद्दा है। तो 1856 में वो काम ढूंढने के लिए जब कलकत्ता गए, तो वो एक बहुत बड़ा शुगर मर्चेंट था, तो उसके एजेंसी, उसका एजेंट बने, शुगर का एजेंसी उन्होंने लिया। तो उन्होंने देखा कि उस शुगर के बिजनेस में इतना उनको बोला जाता था कि झूठ बोलना है, धोखाधड़ी, मिलावट, ये वो। उन्होंने कहा ये सब मैं नहीं करूंगा। तो उनके मालिक ने कहा ये सब नहीं करोगे तो जाओ भाई। तो उन्होंने जॉब पर जॉब चेंज करते गए, क्योंकि सब में यही चीज थी। और उन्होंने कहा इफ आई एम द गुरु ऑफ सो मेनी डिसाइपल्स एंड आई एम टेलिंग देम टू फॉलो द फिफ्थ रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स, नो चीटिंग एंड लाइंग, हाउ कैन आई डू दैट। तो अपने इतने बड़े परिवार को संभालते हुए उन्होंने ये जो अपराधर्म है उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। He never used Krishna consciousness to engage in any kind of cheating or lying. तो यहां पर जब हम इसका समन्वय देखने का प्रयास कर रहे हैं कि परा और अपरा, vertical और horizontal, यह समझना चाहिए कि दोनों में विरोधाभास नहीं है, they are interdependent on each other and they are integrated, they strengthen each other, ये दोनों। अब यदि हम भगवान श्री कृष्ण उनके जीवन में देखें, तो भगवान श्री कृष्ण के जीवन में उन्होंने वृंदावन में लीलाएं की, और फिर वृंदावन के बाहर द्वारका, मथुरा, मगध गए, हस्तिनापुर पांडवों के साथ। तो देखोगे कि एक तरफ प्रेम धर्म है और एक तरफ है कर्तव्य धर्म। हमारे आचार्य वो लिखते हैं कि जब भगवान वृंदावन में गोपियों के साथ विहार और लीलाएं कर रहे थे, उस समय भगवान अपने मन में वृंदावन के बाहर जाकर जो उनको कर्तव्य धर्म उनका करना है, धर्म की स्थापना करनी है, उसके बारे में सोचते थे। सो व्हाइल परफॉर्मिंग प्रेम लीला, कृष्णा वॉज कंटेम्पलेटिंग एंड प्रिपेयरिंग फॉर हिज कर्तव्य लीला। और कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर या फिर द्वारका में जहां पर वो अपना कर्तव्य धर्म निभा रहे हैं, ही वुड बी मिसिंग द गोपीज। समन्वय उसका सहजीयवाद क्या है? सहजीयवाद ये है कि प्रेम चाहिए बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी के। तो सहजीयवाद को मैं डिफाइन कैसे करता हूं? सहजीयवाद मीन्स आई वॉन्ट सैलरी विदाउट वर्क। दैट इज इन मॉडर्न लैंग्वेज सहजीयवाद। आई वॉन्ट सैलरी विदाउट वर्क। तो आप देखिए कि भगवान ने जो अपनी एकदम प्रेम धर्म की लीलाएं जो हैं, वो बहुत प्राइवेट जगहों पर की, परंतु कर्तव्य धर्म उन्होंने पब्लिकली किया। और 11 साल ही वो वृंदावन में रहे, उसके पश्चात बाहर जाकर उन्होंने बाकी लीलाएं की। तो अर्थात भगवान ये बता रहे थे कि इस भौतिक संसार में रहते हुए जो हमारा बहुत हाई लेवल भगवान के साथ रिश्ता होगा, उसको हमें प्राइवेट रखना है। परंतु जब एक आदर्श कर्तव्य धर्म निभाने की बात आती है, दैट वी हैव टू डू पब्लिकली। एक आदर्श भक्त भगवान का प्रतिनिधित्व कैसे करता है अपने कर्तव्य धर्म को निभाते हुए, वो उन्होंने इसके द्वारा सिखाया। अब यदि हम कल्चर्ड लिविंग को लें डिफरेंट लेवल्स, तो सबसे पहले हम लेंगे द कल्चर ऑफ एक्शंस। अब यहां पर ये ध्यान में रखना है कि हम कौन से एक्शंस की बात कर रहे हैं। जब हम मंदिर में आते हैं और ये जो भक्तों का चोला पहनकर मंदिर में भक्ति करते हैं, हम उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम चर्चा कर रहे हैं एक्शन ऑफ अ साधका एट एवरी प्लेस एट एवरी मोमेंट। एग्जाम्पल चैतन्य चरितामृत से, भवानंद राय जो कि रामानंद राय के पिता, और रामानंद राय के एक भाई थे गोपीनाथ पट्टनायक, तो ये भगवान, सोचो रामानंद राय, भवानंद राय, चैतन्य महाप्रभु के बहुत निकटतम पार्षदों में से। तो चैतन्य महाप्रभु को समाचार प्राप्त होता है कि गोपीनाथ पट्टनायक, उसे चंगा पर चढ़ा दिया गया है मृत्युदंड देने के लिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ पैसों का फेरबदल किया, और उस समय जो प्रमुख मेन गवर्नर जिसको बोलेंगे प्रताप रुद्र महाराज, जो कि नवाब हुसैन शाह के अंडर, जब चैतन्य महाप्रभु को बताया गया कि गोपीनाथ पट्टनायक ने ही हैज मिसअप्रोप्रिएटेड द फंड्स ऑफ द किंग, चैतन्य महाप्रभु का रिएक्शन क्या था? डीडी से, अरे वैसे भी मुसलमान राजा के पैसे हैं, अच्छा हो गया थोड़े से हड़प कर लिए। गोपीनाथ पट्टनायक वॉज कॉट चीटिंग। चैतन्य महाप्रभु का रिएक्शन था, ही हैज टू फेस द कॉन्सिक्वेंस, ही हैज टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। चैतन्य महाप्रभु ने गोपीनाथ पटनायक के एक्शंस को कवर अप नहीं किया। क्या बता रहे हैं वो? व्हाट शुड बी द कल्चर ऑफ वंस एक्शंस एज फॉलोअर ऑफ चैतन्य महाप्रभु, नॉट डायरेक्ट साधना भक्ति आउटसाइड। छोटा हरिदास क्यों दंडित किया? अकॉर्डिंग टू चैतन्य महाप्रभु एक्शन वॉज इनअप्रोप्रिएट ऑफ छोटा हरिदास। तो अब ये प्रश्न यदि हम पूछें कि हम जब दीक्षा लेते हैं और ये श्लोक है ब्रह्म संहिता से, कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजा, हमने वो दीक्षा के समय बीज और वो केला वो सब डालकर किया क्या है? हमारे कर्मों को वहां पे झोंक दिया है, जला दिया है। तो जब दीक्षा के समय हम वो बीज और वो केला जलाते हुए हमारे कर्मों को जला रहे हैं, कर्माणि निर्दहति, तो उसके पश्चात तो हम फिर शुद्ध भक्त के रूप में घूमते फिरते रहना चाहिए। हाउ डू यू अंडरस्टैंड? व्हाई डू वी स्टिल स्ट्रगल विथ आर कंडीशनिंग्स इन स्पाइट ऑफ द दीक्षा सेरेमनी? व्हाट डू यू से? क्या बोलते हैं आप लोग कि सब शुद्ध भक्त हो गए, सारे केले जल गए, फिर जला हुआ केला क्यों खाते हैं? हाँ? प्रवृत्ति नहीं जाती। वो जो उस दिन का जो एक्ट है, हमारे सरेंडर का जो एक्ट है, दीक्षा इज नॉट जस्ट वंस इन अ लाइफ टाइम दैट डे ऑफ दीक्षा, दैट कमिटमेंट, इट इज एवरी मोमेंट एवरी डे वी हैव टू रीइंफोर्स इन अवर एक्शंस। जैसे बहुत से ये जो अब्राहमिक रिलीजन्स हैं उसके अंदर क्या बोलते हैं, यू जस्ट बिलीव इन जीसस, जीसस में विश्वास रखो, ही विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो क्या कहा जा रहा है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेंगे, आप जो भी करना है करते रहो, यू जस्ट हैव टू बिलीव। यहां पर ये नहीं कहा जा रहा है, गीता का आदेश क्या है, सततम कीर्तयन्तो माम, सर्वधर्मान परित्यज्य जो है वो हर क्षण है, केवल एक बार सरेंडर नहीं है, वो सरेंडर एट एवरी मोमेंट। तो इसलिए जब हम कल्चर ऑफ एक्शन की बात कर रहे हैं, दैट कल्चर ऑफ एक्शन शुड बी ऑल थ्रू आवर लाइफ, एवरी प्लेस, एवरी मोमेंट, इन एवरी सिचुएशन। देन देयर इज कल्चर ऑफ स्पीच। ये अलग अलग हमारे आचार्यों ने, भगवान ने ग्रंथों में क्यों अलग अलग दिया है कि आपके कर्मों को कैसे आपको सुसंस्कृत बनाना है, आपकी स्पीच को, अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रियम हितम चयत, भगवान ने स्पेसिफिकली स्पीच के बारे में वो श्लोक कहा है कि आपका स्पीच कैसा होना चाहिए। क्योंकि अब एक तरफ तो हाँ हमने ठीक है, भक्तों के संग में जब रहते हैं तो हमारा वो एकदम टिपिकल वैष्णव स्पीच रहता है, प्रभु दंडवत वांछाकल्प, हाँ, और कई बार हम जब अपने काम पर जहां पर कोई भक्त नहीं है तो वहां पे दूसरी डिक्शनरी निकलती है बाहर। तो होता क्या है कि जब एक माहौल में हम एक पर्टिकुलर वोकैबुलरी यूज कर रहे हैं और जैसे ही माहौल बदल जाता है और हमारी वोकैबुलरी बदल जाती है, तो समझ में आ जाना चाहिए कि फिर वो एक प्रामाणिक साधक नहीं है, वो गिरगिट के रंग हो रहे हैं, बदल रहे हैं फिर कि संघ के अनुसार उसकी वोकैबुलरी बदल रही है। तो होगा क्या कि जो देखेगा कि अरे भाई ये मंदिर में तो एकदम वैष्णव भाषा बोलता है और यहां के माहौल में अब क्या बताएं वो क्या भाषा है, तो उसे धीरे धीरे उसे क्या लगेगा कि भाई ये सब कुछ ओके है, ये कुछ सब कुछ स्वीकारणीय है कि आप मंदिर में अलग और मंदिर के बाहर अलग, आपके एक्शंस मंदिर में अलग मंदिर के बाहर अलग, आपकी स्पीच मंदिर में अलग मंदिर के बाहर आपकी स्पीच अलग। बीइंग अ कल्चर्ड डिवोटी मीन्स योर एक्शंस योर स्पीच शुड हैव द कंसिस्टेंसी कल्चर ऑफ थॉट्स कि हां हम एक विचारधारा को प्राप्त करते हैं जब हम साधना भक्ति में लगते हैं तो हमें एक विचारधारा दी जाती है कि इस विचारधारा के बलबूते पर हमें साधना भक्ति करनी है। परंतु जब हम अपने माहौल को उस विचारधारा के अनुसार नहीं बनाएंगे तो फिर हम जहां कहीं पर भी रहें, जैसे कि हम उसकी चर्चा कर रहे हैं कि एक परिस्थिति है एक मनस्थिति है, तो हमारी मनस्थिति के अनुसार हम परिस्थिति बनाते हैं और जो परिस्थिति हमने बनाई है उस परिस्थिति के बलबूते पर धीरे धीरे हमारी मनस्थिति बनती है। अगेन जैसे हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ये दोनों रिलेशनशिप लिया, परा और अपरा, दे बोथ हैव टू बी कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर नॉट कॉन्ट्रडिक्टिंग ईच अदर, दे बोथ शुड बी कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर, हमारी जीविका और हमारे जीवन तत्व। फिर है कल्चर ऑफ सोशल लिविंग, यहां पर हम चर्चा कर रहे हैं कि जब हम एक सोसाइटी में रहते हैं, चाहे आप किसी कॉलोनी में रहते हो, जो भी आपका नेबरहुड हो, आप एक राज्य में रह रहे हो वो भी एक प्रकार की सोसाइटी है, तो हाँ हमें बताया गया है कि वर्णाश्रम, अब जैसे वर्णाश्रम है तो वर्णाश्रम में हमें हो सकता है कि जो सोसाइटी में हम रह रहे हैं हम जानते हैं कि ये कौन से वर्ण में है ये कौन से आश्रम में है, वो व्यक्ति नहीं जानता होगा, हम जानते होंगे। तो हम यदि भगवान श्री कृष्ण के प्रामाणिक साधक भक्त हैं तो हमें उनके सोशल स्टेटस को रिस्पेक्ट करना है, इवन इफ दे माइट नॉट नो। भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर का उदाहरण बहुत एक्सट्रीम एग्जाम्पल है ये, जब वो गौड़िया मठ बनवा रहे थे तो उन्होंने देखा कि उनको एक पर्टिकुलर डेडलाइन टाइम पर वो गौड़िया मठ पूरा करना था, तो जो काम करने वाले कामगार लेबर, भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर उनकी बीडीज रोल करते थे कि तुम काम करो, डोंट वेस्ट योर टाइम, आई विल डू इट फॉर यू, ही वुड रोल देयर बीडीज। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि वो उसको प्रोपगेट कर रहे हैं, बट यस ही अंडरस्टूड दैट दे आर कंडीशन टू दैट, सो समहाउ ऑर द अदर ही वॉज एंगेजिंग देम इन समथिंग विच विल हेल्प देम इवेंचुअली इन देयर स्पिरिचुअल लाइफ। तो जो वर्णाश्रम है, अब हाँ वर्णाश्रम को बाह्य कहा गया है, चैतन्य महाप्रभु रामानंद संवाद में उसको बाह्य, चैतन्य महाप्रभु ने तो डायरेक्ट श्लोक बोल दिया है ना हम वर्णी न च गृहपत, वो श्लोक में डायरेक्टली बोल दिया है कि ना तो मैं वो हूं ये, लेकिन फिर भी चैतन्य महाप्रभु स्वयं उन्होंने संन्यास लिया, उन्होंने गृहस्थ आश्रम का पालन किया और उन्होंने फिर जो कूर्म ब्राह्मण हैं उनको कहा कि आप आपके गृहस्थ आश्रम का पूर्ण प्रकार से पालन करो, आपको सब कुछ छोड़ के मुझे ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। व्हाई? बिकॉज ही वॉज लुकिंग इन टू द कंडीशन ऑफ दैट पर्सन। सो द कल्चर ऑफ सोशल लिविंग, अब ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, कल्चर ऑफ the country in which you are living. तो अभी अक्सर हम लोग फैनेटिक जो अप्रोच लेते हैं कई बार. फैनेटिक अप्रोच क्या है? दो फैनेटिक अप्रोच है. एक है देशभक्ति, ये मंडेन है, और दूसरा एक्सट्रीम है देशभक्ति ही भक्ति है और कुछ नहीं. देश नहीं तो भक्ति नहीं, ये दूसरा एक्सट्रीम है. हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. अभी जनगण मन पर खड़ा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए भक्त को? ठीक है, मैं आपको ये ऑनेस्ट क्वेश्चन पूछता हूं कि एज एन इनिशिएटेड डिवोटी इन इंडिया, जनगण मन पर आप तिरंगे को आदर दोगे या नहीं दोगे? हाँ, समझ में नहीं आया मुझे, क्या बोला? देंगे. तो अब क्या भावना से दोगे, किस भावना से उसको आदर दोगे? आप कोई बोल सकता है क्या है ये जनगण मन, तो इट्स अ मंडेन ग्लोरिफिकेशन ऑफ जस्ट अ पीस ऑफ लैंड इन दैट शेप. रामायण से उदाहरण दूं आपको. रामचंद्र जी जब रावण का वध कर दिए तो लक्ष्मण रामचंद्र जी से कहते हैं कि प्रभु वापस इतनी दूर अयोध्या जाने की क्या जरूरत है, क्यों ना हम लंका पर ही राज्य करते हैं, आप लंकेश बन जाओ. लक्ष्मण ने ये प्रस्ताव, इतनी स्वर्णिम लंका है, बना बनाया पूरा, ये इतना बड़ा राज्य है, अब इतना दूर क्यों जाना, उधर हाँ इधर ही सेटल होते हैं. तो लक्ष्मण ने जब रामचंद्र जी के सामने प्रस्ताव रखा तो रामचंद्र जी ने क्या कहा लक्ष्मण से? जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, कि जिस भूमि पर मैंने जन्म लिया है वो मेरे लिए स्वर्ग से भी ज्यादा गरीयसी, आदरणीय है, माय मदरलैंड. ये है वाक्य प्रभु श्री राम के, कि जिस भूमि पे मैंने जन्म लिया है, जननी जन्म भूमिश्च, वो मेरे लिए आदरणीय है. कुछ मेरे ख्याल से साल पहले एक मैं जब यहां से यूके फ्लाइट पर जा रहा था तो एक छोटी सी लड़की, वो बिजनेस क्लास से भागती हुई, छोटे छोटे बच्चे ऐसे कई बार भागते रहते हैं फ्लाइट में, तो वो भागती हुई आई, उसके हाथ में एक चॉकलेट था. तो वो उसका रैपर खोल नहीं पा रही थी, तो मेरे को दिखाई कि रैपर खोल के दोगे? तो मैं वो रैपर खोल के उसको चॉकलेट, मुझे नहीं पता किसकी बेटी है वो. तो जब वो खाना शुरू कर दी, रैपर मैंने खोल दिया और वो खाना शुरू करी, तो उसकी माँ भागते हुए आई और फिर उसकी माँ उसको ले जा रही थी. और जब उसको पता चला तो मैंने वो रैपर मेरे हाथ में था, तो उसने मेरे को धन्यवाद किया, ये वो रैपर लिया, फिर उसने वो डस्टबिन में डाला. तो मैं वही सोच रहा था कि वो छोटी सी बच्ची, मुझे नहीं पता कि उसकी माँ कौन है, परंतु उसकी माँ मुझे इतना धन्यवाद कर कर गई कि न जानते हुए तुमने मेरी बेटी की कुछ सेवा करी है. तो मैं इसी संदर्भ में कहना चाहूंगा कि चाहे अभी कितने सारे हमारे भारत में देशभक्त हैं, हो सकता है कि वो दीक्षित हमारे हरे कृष्ण जप करने वाले नहीं होंगे वो लोग, और हम जो भूमि देवी या भारत माता को किस दृष्टिकोण से देखते हैं? भागवत के दृष्टिकोण से देखते हैं, चैतन्य चरितामृत के दृष्टिकोण से देखते हैं, रामायण के दृष्टिकोण से देखते हैं. तो हम जानते हैं कि हाँ ये हमारी माँ, हाँ भूमि देवी, ये हमारी माँ जो है ये किसकी अर्धांगनी है? भगवान की अर्धांगनी है। उस दृष्टिकोण से हम देखते हैं। और जो देशभक्त हैं या जो देशभक्त हुए हैं वो इस दृष्टिकोण से नहीं देख रहे हों, परंतु फिर भी अनजाने में वो हमारे माँ की सेवा कर रहे हैं। जैसे मैं नहीं जानता था कि ये बच्ची किसकी है, परंतु जब मैंने उसे वो चॉकलेट का रैपर खोल कर दिया तो उसकी माँ ने उसकी सराहना की। सिमिलरली वी मे नॉट सी द डायरेक्ट कनेक्शन ऑफ द पेट्रियट्स ऑफ दिस कंट्री विथ प्योर डिवोशनल सर्विस, बट द वेरी फैक्ट दैट दे आर डूइंग समथिंग सेल्फलेसली फॉर दिस कंट्री हु इज अवर मदर, वी शुड हैव रिस्पेक्ट फॉर देम। दिस इज कॉल्ड बैलेंस्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कल्चर ऑफ पेट्रियटिज्म while living in this country, not go to the extremes। और चैतन्य महाप्रभु ने चैतन्य चरितामृत के अनुसार भारत भूमि तो होइल मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक कर कर परोपकार। तो वहां पर भी उन्होंने हमारा कनेक्शन किससे करवाया? जो भारत भूमि में जन्म लिए हैं, एक तरफ है रामचंद्र जी, उन्होंने क्या कहा, जननी जन्म भूमिश्च। यहां चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। तो इन दोनों का समन्वय, इसको कहते हैं कल्चर्ड लिविंग विद इन द प्रेजेंट कंट्री एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ पेट्रियटिज्म। एक है नेशनलिज्म, नेशनलिज्म थोड़ा रेडिकलिज्म हो जाता है उसके अंदर, इसलिए मैंने यहां पे वर्ड क्या यूज किया है, पेट्रियटिज्म। तो जब इसका समन्वय होगा तब हम देखेंगे कि ये जो कल्चर्ड लिविंग है डिफरेंट लेवल्स, कल्चर ऑफ एक्शन स्पीच थॉट्स, कल्चर ऑफ सोशल लिविंग, कल्चर ऑफ पेट्रियटिज्म। तो अब हम इस मुद्दे पर आते हैं, ये एक बहुत ही गहन मुद्दा है जो यहां पर आप पढ़ सकते हो, कारण और निर्णय। एक है हमारे जीवन में हमने क्या निर्णय लिया है, हमारे डिसीजन, और उस डिसीजन तक पहुंचने के लिए जो माध्यम, उसको हम कारण कहेंगे। तो सबसे पहला एग्जाम्पल हम अर्जुन का लेते हैं। अब देखिए, अर्जुन भगवद गीता के प्रथम अध्याय में जो कारण देते हैं युद्ध नहीं करने के, क्या वो कारण जायज थे या नाजायज थे, क्या कहोगे आप लोग? जस्टिफाइड। रीजंस गिवन बाय अर्जुन इन द फर्स्ट चैप्टर वर जस्टिफाइड, वर बोनाफाइड, but his decision was rejected by Krishna. Krishna didn't reject the reasons, Krishna rejected the decision of Arjun. निर्णय को स्वीकार नहीं किया। ठीक है, तुमने वर्ण संकर है, जो भी कुछ सगे संबंधी हैं, जो भी कुछ तुमने कारण दिए हैं, भगवान ने उसको छुआ नहीं, लेकिन इस कारण के बलबूते पर जो तुमने निर्णय लिया है युद्ध नहीं करने का, वो स्वीकार नहीं है। इसके अगेंस्ट हनुमान जी का एग्जाम्पल है कि हनुमान जी का एग्जाम्पल अगर हम देखें तो जब विभीषण की शरणागति, विभीषण आते हैं अपनी शरणागति देने के लिए, तो सुग्रीव है, अंगद हैं, जामवंत हैं, ये सब वो लोग को रामचंद्र जी पूछते हैं, सब अपना अपना वो मत दे रहे हैं। फाइनली हनुमान जी को जब पूछते हैं तो हनुमान जी क्या कहते हैं कि विभीषण को स्वीकार करना चाहिए। निर्णय हनुमान जी क्या देते हैं, विभीषण को आपको स्वीकार करना चाहिए। तो रामचंद्र जी पूछते हैं क्यों करना चाहिए, कारण बताओ। तो हनुमान जी कहते हैं कि हो सकता है विभीषण ने ये देखा हो कि आपने जो कि सुग्रीव को राजा बना दिया और आप भरत को वहां पर राजगद्दी दे दिए हैं, तो विभीषण भी शायद हो सकता है कि इस लोभ से आए हों कि आगे चल के प्रभु राम मुझे भी लंकेश बना देंगे। रामचंद्र जी ने जब कारण सुना तो हनुमान जी को उन्होंने डांटा, उन्होंने हनुमान जी को कहा कि तुम्हारा निर्णय सही है परंतु जो तुम कारण दे रहे हो विभीषण इस कारण से मेरे शरणागत होने आया है वो गलत है। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है। अर्जुन के केस में कारण को स्वीकार किया, निर्णय को रिजेक्ट किया। हनुमान जी के केस में निर्णय को स्वीकार किया, कारण को रिजेक्ट किया। हम ध्रुव महाराज का एग्जाम्पल लें कि ध्रुव महाराज का क्या निर्णय था कि मुझे ब्रह्मा जी से भी बड़ा राज्य चाहिए, ये उनका निर्णय था। और उस निर्णय को प्राप्त करने के लिए वो भगवान की भक्ति करे वो सही था। और आगे चलकर नारद मुनि ने देखा कि अभी इसमें समन्वय नहीं हो पा रहा है, तो कम से कम कारण तो सही है, आगे चल के निर्णय भी ठीक हो जाएगा इनका। और वही हुआ, आगे चल के जब ध्रुव महाराज ने भगवान का दर्शन किया तो ध्रुव महाराज को तब समझ में आया कि अरे काचन विचिन्वन, कि मैं एक रत्न मुझे प्राप्त हो चुका है और मैं कांच के टुकड़ों के पीछे भाग रहा था। तो ध्रुव महाराज के एग्जाम्पल में हम देखते हैं कारण और निर्णय। रामायण में उदाहरण है जबाली ऋषि का कि जब प्रभु श्री राम को फिर ले जाने के लिए सारे अयोध्यावासी आए, मनवाने के लिए आए, तो अलग अलग तरीके से वो प्रभु श्री राम को मनाने की कोशिश कर रहे, परंतु फाइनली रामचंद्र जी जब नहीं माने कि नहीं मैंने वचन दे दिया है, मेरे पिता को कैकेयी को वचन दे दिया है, मैं अब मुकर नहीं सकता उस वचन से, तो जबाली ऋषि वो कहते हैं कि अरे कौन आजकल किसी वचन का पालन करता है, भाड़ में गए सारे वचन, कौन किसी का बाप है, कौन किसी की माँ है, कौन किसी का धर्म है, अपना स्वार्थ देखना चाहिए। तो जबाली ऋषि वो रामचंद्र जी को स्वार्थी, स्वार्थ धर्म क्या है वो बता रहे हैं, बिकम सेल्फिश, फॉरगेट अबाउट यू नो बींग आइडियल, बींग प्रिंसिपल्ड और ये वो। और जब रामचंद्र जी ने जबाली ऋषि के मुख से ये सुना तो वो मारने पर उतारू हो गई कि ये मेरे पिताजी ने किसको रखा है अपने मंत्रिमंडल में, ये ऐसा व्यक्ति जो ऐसी घटिया बात बोल रहा है। तब जाके वशिष्ठ मुनि वो संभालते हैं, वो कहते हैं कि ये इनका इंटेंशन वो नहीं है, इनका इंटेंशन है आपको वापस ले जाना। तब रामचंद्र जी बोलते हैं कि हाँ इनका निर्णय वो सही होगा मुझे वापस ले जाना, लेकिन जो इन्होंने माध्यम लिया है वो गलत है। तो रामचंद्र जी ने सिखाया कि कारण और निर्णय ये दोनों का समन्वय होना चाहिए। और फाइनली ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और पावरफुल स्टेटमेंट श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का है, हार्मनी इज इनएविटेबल व्हेन एवरीथिंग इज कंसिडर्ड एंजॉयबल फॉर कृष्णा। बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट मुझे लगा सरस्वती ठाकुर का। यूजेज ऑफ वर्ड्स देखिए और एलोक्वेंस देखिए सरस्वती ठाकुर का। हार्मनी विल बी इनएविटेबल व्हेन एवरीथिंग इज कंसिडर्ड एंजॉयबल फॉर कृष्णा। एवरीथिंग मीन्स योर परा एंड योर अपरा। तो यदि हम ये सोच रहे हैं कि मेरी दीक्षा हो गई है, मैं मंदिर में आके सोला माला करता हूं और उसके बाद मैं अपने दिन भर कुछ भी करूं, क्या फर्क पड़ता है? बाहर के समाज में मैं कुछ भी करूं, क्या फर्क पड़ता है? तो वो किसके समान है? जैसे कोई आपको महाप्रसाद मंगल आरती स्वीट राइस दिया है, एक जली हुई खोपड़ी में, क्या बोलते हैं, कवटी स्कल, somebody is offering you sweet rice in a skull, sorry ये थोड़ा क्रूड एग्जाम्पल हो गया. सो इफ आवर कंटेनर इज नॉट कंड्यूसिव टू द कंटेंट, इवन इफ दैट इज देर इज स्वीट राइस, मंगल आरती डायरेक्टली ऑफर्ड टू मदन गोपाल जी, but it will spoil the entire effect of relishing that Mahaprasad. Therefore, when we are talking of devotee, we should be talking of cultured devotee. When we talk of mango, we talk of Alfonso mango. When we talk of ghee, we talk of cow ghee. Therefore, let's not just be a devotee, become a cultured devotee. Thank you all very much. Hare Krishna. Kisi ka koi prashn? Welcome after a long time. See, when we are talking of apara and para dharma, when we are talking of our material responsibility and spiritual responsibility, basically I was talking of, as far as your material responsibility, yes, if you have to cook sweet rice for Madan Gopal, you can't look for how to make sweet rice in Bhagavad Gita. You don't know how to make a sweet rice, you can't open Bhagavad Gita, that Bhagavad Gita will teach you how to make sweet rice for Krishna. Bhagavad Gita will teach you in what consciousness that sweet rice should be made. But if you want to learn how to make the sweet rice, you have to open a recipe book. So opening and reading a recipe book might not seem to be directly thinking of Krishna. But if you are having this intention that I am reading this recipe book so that I can learn how to make good sweet rice for the pleasure. Therefore, the last quote was, harmony is inevitable when everything is done for Krishna's enjoyment. So, in devotion means, when Krishna told to Arjun, Mam Anusmara Yudhyacha, that you fight thinking of me, which means you fight in connection with me. So for fighting, Arjun has to focus on his archery skills. Not that Arjun was constantly just meditating on the Shamsundar form of Krishna while shooting. No, he was focusing on the enemy. But the end result was offered to the feet of Krishna, done in that consciousness. That is called to be always in consciousness of Krishna. Okay. And what is not difficult? You tell me. Are things easy in this world?
Precisely.
Yeah. When Prabhupada was asked by Tamal Krishna Maharaj that you said Krishna consciousness is easy. Prabhupada said, yes. I never said that Krishna consciousness is simple. Prabhupada said, yes, it is simple. I never said it is easy. Krishna consciousness is simple. Prabhupada said, I never said it is easy. In this material world, we see even to have meals on your plate every day, people have to work so hard. So if anyways we have to slog hard, work hard, why don't we do it for Krishna and get purified? So what is easy in this world? Nothing is easy in this world. No free lunches. Even at the Hare Krishna temple. What happens to what?
Self.
See, no, Krishna consciousness is the most practical. What we have discussed is on the most practical level. What Prabhupada has given Krishna consciousness is the most practical. What Bhagavad Gita teaches us is the most practical. Krishna is not talking of something which is impractical. In fact, what Arjun was proposing was impractical. Krishna asking Arjun to continue fighting as a Kshatriya warrior and also in that consciousness, detached consciousness, that is the most practical. If you are talking of practicality, there can be nothing more practical than Bhagavad Gita. There can be nothing more practical than what we discussed this morning to balance between para and apara. So why do you say that this is our temple, this is your temple also? Why don't you correct? Yeah, this is, whoever is coming in this temple, it's the, you know, responsibility of the person who is coming over here to consider this temple. Prabhupada opened this temple for everyone. In fact, it is said that Prabhupada, he built a house at which the whole world can live. So if you see that someone is doing something wrong, yes, it's your responsibility, it's your home. Why don't you correct that person? Just like if somebody comes to your home and does something like that.
I don't blame that person. He is trying to keep me in this place, to be in proper shape, in proper condition. And because he sees the child doing, hearing a leaf from the tree, that person is not wrong. But he, yeah, he told her, that.
Okay, so accepted what you saw, a misbehavior done by someone who is wearing tilak.
No, this is not for person. This happens for everyday life with us. With me, I am not bothered about anybody else. Let us say,
I'll tell you. I always give the example that we are like patients in a hospital. Okay? And we are getting treated. If one patient is, you know, having dysentery, is vomiting, and is coughing, and creating all these sounds because of the sickness and ailment, then definitely the other patients knows that, you know, he is also undergoing the treatment, I am also undergoing the treatment. Hospital means you will find patients over there. So Prabhupada created these hospitals where who is coming? Not everyone the pink of their health. We are coming over here as patients, and yes, you will find that patients, they are having their symptoms of the disease. So, you know, what the patients have to do? The patients have to help each other get treated. We already did it. आप बुधवार के कार्यक्रम में नहीं आ रहे. कई बुधवारों से हम एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं. परिस्थिति न बदले तो अपनी मनस्थिति बदलो. सो यू इफ यू आर कन्फेसिंग दैट यू सी समथिंग एंड यू गेट डिस्टर्ब्ड, इफ यू कांट चेंज द सिचुएशन देन चेंज योर सेल्फ. या कृष्णा डिडंट चेंज द सिचुएशन फॉर अर्जुन. कृष्णा सेड दे विल बी देयर, I won't change the enemy. The enemy will be the same for you. I will change your consciousness. So that's what we have to do. When the situation is beyond change, we change our consciousness. And that is, I have experienced, there can be nothing more practical than this message from the Gita. Paristhiti jab na badle, तो मनस्थिति बदलो.
थैंक यू वेरी मच प्रभु जी फॉर एनलाइटनिंग. प्रभु जी प्रश्न ऐसा है कि जो आपने लास्ट टाइम भी बताया था अधर्म, फिर अपराधर्म पराधर्म, उसे अगर हम एक एनालॉजी दें कि समथिंग लाइक ब्लैक जोन, ग्रे जोन एंड व्हाइट जोन, तो व्हाइट जोन जो होगा वो पराधर्म है, ब्लैक जोन जो है वो अधर्म है, लेकिन हमारा जीवन यापन करने के लिए हमें जो ग्रे जोन है काफ़ी बड़ा अपराधर्म, हमारे ड्यूटीज करते रहने पड़ते हैं, तो उसमें फिर कभी कभी जैसे प्रभु जी ने भी अभी बताया कि मोमेंट टू मोमेंट डिसीजंस वी हैव टू टेक, सो इन दैट समटाइम्स प्रॉब्लम ऑकर्स और समटाइम्स देर मे बी अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पराधर्म एंड अपराधर्म. उदाहरण के तौर पर जैसे कुछ कुछ ग्रे जोन होते हैं जिसमें उनका इंक्लिनेशन टुवर्ड्स वाइट होता है, जैसे कोई स्टूडेंट है वो स्टडी कर रहा है, जैसे आपने एग्जाम्पल दिया वन मे हैव टू लर्न कुकिंग थ्रू कुकिंग बुक, रेसिपी बुक, तो वो व्हाइट ही है, वो ब्लैक की ओर नहीं जा रहा है लेकिन वो ग्रे के अंदर है, तो हमारी कॉन्शियसनेस कृष्णा को प्लेस करने की हो सकती है उसमें. जैसे स्टूडेंट भी है वो मैं रिजल्ट भगवान को अर्पण करूंगा, कोई जॉब करता है तो वो कहेगा कि मैं जॉब करके कुछ लक्ष्मी भगवान की सेवा में दूंगा, लेकिन कभी कभी क्या हो क्या जाता है ऐसे जॉब करते वक्त कभी कभी उसमें उसे ऐसी सिचुएशन से जाना होता है वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है. जैसे एक मेरा कलीग था वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जॉब करता था, तो उसने प्रश्न, उसका ये प्रश्न था कि मैं प्राणी हत्या में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हूँ लेकिन ये जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है कुछ उसमें कुछ मेडिसिन से टैबलेट्स बनते हैं जिसमें उसका ओरिजिन होता है एनिमल सोर्स का, तो वो जॉब करूँ या जॉब छोड़ दूँ, वो उसका डायलमा था. एक मेरा और एक कलीग था जो वेबसाइट डिज़ाइन करता है, तो बहुत अच्छा उसका बिजनेस चल रहा है, एक बहुत बड़ी कंपनी आई और वो उन्होंने कहा कि आप हमारी वेबसाइट हमारे लिए बनाओ, और वो बियर की कंपनी थी, तो इनका बिजनेस उसके ऊपर निर्धारित करता है कि वो कौन से लेवल पे आगे चले जाए क्योंकि वो बहुत बड़ी कंपनी है. तो एट सच टाइम्स व्हाट डिसीजंस वन शुड टेक, तो फिर कभी कभी हम हमारा पराधर्म और अपराधर्म में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है, तो वैसे समय में क्या करना चाहिए? क्योंकि कृष्ण भी भगवदगीता में बताते हैं कि सर्वारंभा ही दोषेण धूमेन अग्नि रिवावृता, ऑल द एफर्ट्स इन दिस वर्ल्ड विल बी टेंटेड विथ सम स्मोक, कुछ परफेक्शन मिलेगा ही नहीं। तो ऐसे सिचुएशंस में क्योंकि हम लोग अपराधर्म में लगे हुए हैं, बहुत बड़ा ग्रेज होने, जॉब करना पड़ता है, स्टडीज है, सब फ्रेंड सर्कल्स रहते हैं आउटसाइड में, तो हाउ टू डील विद दिस कॉन्फ्लिक्ट इन दिस टू धर्म?
देखो, आज जो मैंने तीन धर्म की चर्चा यहाँ पर की, उसमें से तीसरा था आपात धर्म। तो आपात धर्म क्या है? इमरजेंसी। हाँ, आप जैसे ये सब सारे एग्जांपल्स दिए कि कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी में है, कोई वेबसाइट डिजाइनिंग में है, तो ठीक है, यदि कोई एक ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है जब उसको कोई ऐसा कार्य करना पड़ता है जो कि वो हमारे लाइन के अनुसार नहीं है, तो वो इमरजेंसी सिचुएशन है। अब उस इमरजेंसी सिचुएशन को यदि वो अपनी जीविका बना लेता है तो वो गलत है, वो अनएक्सेप्टेबल है। तो जैसे अपना कार प्रिंसिपल है, चेंज द चेंजेबल, एक्सेप्ट द अनचेंजेबल एंड रिमूव द अनएक्सेप्टेबल। सो इफ यू नो द अनएक्सेप्टेबल बिकम्स द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, दैट शुड बी रिमूव्ड। नाउ कृष्ण ऑल्सो ब्रोक द रेगुलर नॉर्म्स, वॉर कोड्स। जैसे कर्ण को मारने के लिए, वही भगवान जो कर्तव्य धर्म का स्थापना करने आए, कर्ण को मारने के लिए उन्होंने वो वॉर कोड तोड़ा वहां पे। और अर्जुन वो कंफ्यूज थे, वो बोले कि इतना बड़ा भगवत गीता का लेक्चर आपने दिया, अब आप मेरे को बोल रहे हैं कि कर्ण को अभी ये निहत्ता है, अभी इसको मारे। वो क्या था? आपत धर्म था। तो आपत धर्म को हम यदि स्टैंडर्ड धर्म बना के जीवन जिएंगे तो वो गलत है, तो उसके अंदर ड्यूप्लिसिटी है। थैंक यू, आई एम रिलीव्ड। आई वॉज इन आपत धर्म। Just like, you know, this example is given that, you know, a thief is driving by, you know, and the police is chasing, you know, the car, the police thief chase, you know. Now the thief is breaking the signal, speed limit, everything. And if the police is following all the traffic rules, why? Because I'm the police. Signal hai, rukna chahiye. Speed limit hai. 60 पे चलाऊंगा, वो 120 पे गया आगे, पुलिस अपना 60 का स्पीड लिमिट पे है। सो व्हेन पुलिस इज ब्रेकिंग द सिग्नल, पुलिस इज ब्रेकिंग इट्स ओन स्पीड लिमिट्स, इट्स ओनली टू कैच दैट थीफ, इट इज नॉट एन इंस्पिरेशन टू अदर ड्राइवर्स। या So therefore, answer to your question is that these are all, and the second point, first is emergency should not be made standard. And the second point is, even if that emergency one has to follow, but if that emergency is spoiling your consciousness and taking you away from your paradharma, then under the guidance of Guru Sadhu Shastra, even that has to be stopped. Finally, one has to check with one's consciousness. That is the litmus test.
इसमें रह जाता है ऐसा, जैसे एक एक लड़का था, उसका MBA किया तो मार्केटिंग करता था, तो लेकिन वो कुछ इंश्योरेंस कंपनी इनके वो मार्केटिंग करता था, तो वो कहा कि दे आर चीटिंग, मतलब वो लोगों को ऐसे प्रॉमिस देके वो लोग बहका रहे हैं। आई नो दैट पीपल आर नॉट गोइंग टू गेट दिस बेनिफिट्स विच द कंपनी इज प्रॉमिसिंग, but I have to do this job. But because he is also chanting 16 rounds, so he is having the guilt of doing that cheating, जो भक्ति विनोद ठाकुर ने जो पांचवा प्रिंसिपल बताया था. तो उसने जॉब छोड़ दिया, लेकिन फिर बाद में उसको दूसरा जॉब मिला नहीं. फिर वो somehow मतलब सब स्टैंडर्ड लिविंग में उसने सेटिस्फाई कर लिया अपने आप को, मतलब प्रिंसिपल लाइफ ही लिव्ड.
हाँ, तो वही है ना, दैट आइदर यू गेट द सेटिस्फैक्शन ऑफ अ लैविश लाइफ, मटीरियल सेटिस्फैक्शन, और यू गेट द स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन ऑफ ऑर्डिनरी लाइफ विदाउट ऑल द लैविशनेस, बट यू आर सेटिस्फाइड दैट you followed the principles.
But if someone's consciousness is high that I'll earn and give more donation, so is because he's not breaking any four regulative principles as such, it is just a moral principle of speaking lie, let us say.
No, then first of all, you know, if he is claiming himself to be a sincere sadhaka, then I don't think any authority, spiritual authority, will say that, okay, you go ahead with your immoral occupation and you give the money to the temple, you know. Nobody will, you know, say that you go ahead with that. So according to Guru Sadhu Shastra, no, he'll be told, okay, even if you have an ordinary job, tum agar tumhara sudama ke pohe offer kar rahe ho bhagwan ko, wo jyada tha na, Duryodhan kya offer kar raha tha, bada donation offer kar raha tha na Duryodhan bada donation offer kar raha tha, bhagwan ne jaake kya khaya, kele ke chilke khaye, to bhagwan dikha rahe hai na, सुदामा के पोहे, केले के छिलके. हाँ, अभी यहाँ पे चीटिंग क्या होता है कि जब तुम्हारे पास 56 भोग है और फिर तुम केले के छिलके खिला रहे हो भगवान को, दैट इज चीटिंग. ठीक है कि भगवान अभी मतलब तुम्हारा आलीशान बंगला है, सब कुछ है, और उसमें तुम ऑल्टर में रोज केले के छिलके ऑफर कर रहे हो कि विदुरानी ने केले के छिलके ऑफर किए थे, तो खुद तो आप बनाना शेक बना रहे हैं, बनाना केक बना रहे हैं, और भगवान को ऑल्टर पे छिलके ऑफर कर रहे हैं कि हो सकता है भगवान को शायद ये ज्यादा पसंद हो. नो, दैट इज चीटिंग. सो वी नो एंड अवर परमात्मा नोज इन द हार्ट कि हाउ मच we can do, why, how much we can change and how much we can do for Krishna and how much is beyond our control, we know and the Paramatma knows.
Hare Krishna Prabhuji, you explained the beautiful concept of balanced patriotism, which I also agree 100%, but if we see Prabhupada's books, he has openly condemned patriotism and nowhere he has given the balanced concept. So how do we understand his mood regarding that?
Oh, where you find Prabhupada is writing letters to Indira Gandhi, Mahatma Gandhi, and giving them the, you know, spiritual perspective of patriotism. That's what, when we are quoting Ramayana, Janani Janma Bhumishcha, when we are quoting Chaitanya Mahaprabhu, Bharata Bhumite, so that is the spiritual perspective. And that's what Prabhupada, he gave. When he was meeting with Indira Gandhi, and when he, in fact, the regulations which he gave for all the MLAs and politicians, that what they should be doing, you know, Bhagavatam study morning and evening, chanting 16 rounds and then coming to parliament, you know. So Prabhupada was talking of patriotism, real patriotism Prabhupada was talking of.
Then when he mentions in his books that patriotism is extended sense gratification, then how do we understand
that? No, he's not talking about patriotism. He's talking about that radical nationalism. Yes. Therefore, I use the word patriotism, not nationalism. Yeah, that is Saiva Gokhara. Yes, Prabhu.
Thank you.
नहीं देखिए प्रभु, अब फाइनली हम क्या गेन कर रहे हैं, ठीक है? इसलिए जो हमने कहा कि एक है आपत धर्म, आपत धर्म का अर्थ क्या है कि उसके अलावा कोई पर्याय नहीं है. आपत धर्म की का डेफिनेशन क्या है? देयर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव. कि कर्ण को मारने के लिए उसके अलावा और कोई अल्टरनेटिव नहीं था. उसके पहले भगवान ने शांतिदूत बनकर ट्राई किया. भगवान ने पहले सारे अल्टरनेटिव्स ट्राई कर लिए. ठीक है, 5 विलेजेस दे दो खाली. सारे अल्टरनेटिव्स ट्राई करने के बाद आपत धर्म. तो हाँ, आप जो एग्जांपल्स दे रहे हो, अगर इन एग्जांपल्स में अगर ये प्रश्न पूछा जाए या उसका एनालिसिस किया जाए कि यदि आपको किसी साइट पे काम कराने के लिए वही भाषा बोलनी पड़ेगी तब जाके काम होगा, और उसके अलावा वो लोग कोई भाषा समझ में नहीं आती, पूरे नासिक में किसी को उसके अलावा कोई भाषा समझ में नहीं आती, कोई पर्याय नहीं है उसके अलावा, हाँ फिर ठीक है कि वो एक ऐसा आपत धर्म है कि डेफिनेटली. लेकिन हमने देखा है कि प्रभुपाद उन्होंने भी प्रोजेक्ट्स करवाए हैं, और प्रभुपाद के अंडर भी जो साइट पे उन्होंने अपने डिवोटीज को रखा, लेकिन हमने कभी ये नहीं सुना कि साइट पे काम करवाने के लिए वो डिवोटीज ने कुछ इस प्रकार का व्यवहार इस्तेमाल किया तब जाके वो काम हुआ. इनफैक्ट हाँ, प्रभुपाद भी स्ट्रांगली बोला करते थे. प्रभुपाद जब अपने डिसाइपल्स को कहते थे कुछ काम करने के लिए तो प्रभुपाद भी स्ट्रांग लैंग्वेज यूज़ किया करते थे, परंतु प्रभुपाद का जो स्ट्रांग लैंग्वेज है उस स्ट्रांग लैंग्वेज के साथ साथ प्रभुपाद का जो प्यूरिटी है, प्रभुपाद की जो शक्ति है उसको फिर से संभाल के रखने की, यदि वो हमारे पास नहीं है तो होगा क्या कि हम हमारे जो इतने ग्लोरियस परंपरा को मिसरिप्रेजेंट करेंगे और वो धीरे धीरे वो हमारे कॉन्शियसनेस को अफेक्ट करेगा. ठीक है, आप काम करवा लोगे. देखिए प्रभु, ऐसा है कि अभी हमने ये भी देखा है कि मैं बोल रहा हूँ कि स्ट्रांग बोलना ये मनाही नहीं है, लेकिन एक घटिया भाषा इस्तेमाल करना जो कि हम जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको शोभा नहीं देता, उसके बारे में मैं बोल रहा हूँ. जैसे वो फेमस स्टोरी है जब नारद मुनि ने वो सांप को भक्त बना दिया और फिर सभी वो पत्थर मारने लगे सांप के ऊपर, तो भगवान नारद मुनि ने उस सांप को क्या कहा, मैंने तुमको डसने से मना किया था, फुफकारने से मना नहीं किया था. ठीक है, हम लोग कई ऐसे होते हैं कि बिना फुफकारे मारते रहते डंग. एक एक्सट्रीम ये है कि कोई फुफकारते नहीं लेकिन डंक मारते रहते हैं, जहर जाता रहता है अंदर. और दूसरा एक्सट्रीम ये है कि बस तुम दब्बू बन के बैठे रहो, नम्रता के नाम पर तुम किसी को कुछ बोलो ही नहीं. नहीं, इसके बीच का बैलेंस भी है. बैलेंस नारद मुनि ने सांप को क्या दिया, तुम तुम्हारा फन ऊपर करो, हाँ तुम फुफकारो, तुम गाली भी दो लेकिन संस्कृत में दो. तो यदि आपको काम भी कराना है तो उसको ऐसी भाषा में कि वो भी सोचेगा कि आज दिन तक ऐसा कोई मालिक मुझे मिला नहीं जो मुझे बोल रहा है हे दुर्विनीत. तो उसको भी लगेगा कि मेरे मालिक भी स्टैंडर्ड में डांटते हैं मुझे. ठीक है. हरी बोल.
हरे कृष्ण प्रभु.
या
प्रभु जी, माय क्वेश्चन इज, कभी कभी हम लोग अपने पराधर्म को संभालने के लिए अपरा भी ऐसा चूज करते हैं जिसमें सेवा हो एंड ओवरऑल गुड हो, और ये करते करते हम ये भी समझते हैं कि यू नो दिस विल सेटिस्फाई कृष्णा एंड गुरु महाराज ऑल्सो, बट हाउ टू कीप अ चेक एग्जैक्टली व्हाट सेटिस्फाइज गुरु एंड कृष्णा, बिकॉज द क्वेश्चन कम्स, इट इज नॉट आंसर्ड वंस. It is answered, it has to be answered every time we make an effort, the next effort in that line or in that particular direction. Sometimes we start questioning our own intentions or our own efforts in that. So, how do we, that becomes very confusing. You're halfway through, but you still feel that, will it really satisfy Guru and Krishna?
See, it depends now for a grahastha. What Guru is expecting from a grahastha is to follow the grahastha principles. Grahastha principles include, you know, husband and wife, they practicing their household responsibilities, keeping Krishna in the center. So that is the primary responsibility of a grahastha towards the guru. Now the occupation which the grahastha chooses, if that occupation is helping that grahastha to perform that primary responsibility towards guru, if it is helping, then that occupation is also pleasing to guru. But if that occupation is coming in the way of that primary responsibility, even if that occupation might be in the mode of goodness, but if it is not favorable for that primary responsibility of that grahastha, it is not pleasing to the guru. So we have to, just like, you know, taking bath for deity worship. Now taking bath for deity worship is helpful for the final performance of deity worship. It is not in and itself pleasing to Krishna. But taking bath, then leading that, you know, pure existence to perform the deity worship is pleasing to Krishna. Similarly, whatever occupation a grahastha chooses, if it is leading for the ultimate goal of the entire grahastha family to keep Krishna in the center, if it is somehow helping everyone, you know, be in that situation, and that is in itself helping or pleasing Guru, and you don't have to then cross-check with Guru, or you don't have to cross-check with anyone. It's all, you know, the standard principles are always spoken by Guru through His Vani, whether in books or whether through His lectures. I don't know. Did I address to you that question of yours?
Yes, Prabhuji, but what happens is nothing comes for free. So like when you are doing something, there are prices. And so if you talk about, you know, the birth of Shivaji Maharaj. So many people say that, you know, Shivaji Maharaj did it. He was great. Fine. But at what cost? Ultimately, his family also had to sacrifice a lot. And that we can see through life of Jizahu and his wives too. So whenever there is some good to come, so always what happens is, as devotee, we are given principles. But those two principles may not work totally in tandem every time. So like, the same family we would like to serve, and for them we are doing something, with along with that try to please Guru Maharaj also, but at the same time when we are doing something for Guru Maharaj, the family gets, you know, or their, you know, this thing gets sacrificed. Or if we are doing something for the family, we are not able to serve that greater good. You know, many other times, there are always, you know, seemingly, you know, clashes. I'll not say contradictions. They are clashes. Clashes because time available is only that much. You cannot buy in more time. And at the end, what your life is, so, you know, like, of course, we are taught to live for this, and service is the major this thing. But, you know, in service also there is clashes, so many clashes.
See, first of all, when you give examples of Shivaji Maharaj, you know, personalities like Shivaji Maharaj are not born every day. These are exceptions. We have Chaitanya Mahaprabhu, who sacrificed his widowed mother and young wife to take sannyas when he was 24 years old. And Sarvabhauma Bhattacharya was concerned. You are so young, you are so beautiful, how will you maintain your sannyas? So these are all exceptional personalities who are born with such responsibilities that when they exhibit the sacrifice, that becomes like an ornament. वो एक आभूषण बनता है. शिवाजी महाराज ने जो बलिदान, उसको बलिदान बोलेंगे. प्रभु रामचंद्र जी ने जब सीता का बलिदान किया तो वो उनका आभूषण बनता है. चैतन्य महाप्रभु ने जब संन्यास लिया तो उनका आभूषण बनता है. We should not think that we are on that level, that when we sacrifice our family members to accomplish something, yes, if your Guru Maharaj has directly told you to do that, then yes, you might be that legend, or you might become that legend. But if Guru Maharaj has not directly told you that, and to think oneself that, you know, that I should be sacrificed at the expense of my family, I'll be doing this, then that is being independent. So we have to directly consult the Guru in this situation, in the specific situation, and get direct instructions, and the Guru will tell, okay, or the bona fide authority will say that this is what is good for you at this moment, and then just follow that. Yeah. जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. निताय गौर प्रेमानंदी.
इस गए शिक्षाष्टकम प्रभु की
जय.
कुछ सूचना इस प्रकार से है, कल एकादशी है और अगर इंद्र प्रभु इनका आविर्भाव दिवस है तो हमारे कीर्तन मंडली 6:30 से 9:30 तक कीर्तन करने वाले हैं. और जो गीता पाठ होगा वो फिर 4:00 चालू होगा, तो जो गीता पाठ करने वाले कृपया 4:00 आ सकते हैं और बाद में 6:30 से कीर्तन चालू होगा. आने वाले मंगलवार को जागृति का मीटिंग होगा जो 8:00 होगा, जो इजग्रेस कौनते प्रभु और राधा गोविंद माता जी दोनों देने वाले हैं. तो जागृति सभासदों को, मेंबर्स को सूचित किया जाता है, कृपया इसको आप मिस मत कीजिए. अतिथि सेवा की ओर से ये सूचना आ रही है कि इसके लिए सेवकों की आवश्यकता है जो अतिथि सेवा में कोई हफ्ते के कोई भी एक दिन सेवा दें. जो हमारा अतिथि काउंटर होता है, कर्नल नायर प्रभु जो है रामचंद्र प्रभु, वो मैनेज करते हैं उस सेवा को. तो अगर किसी के पास समय है तो आप उनको संपर्क कर सकते हैं.